एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
सर्मन नंबर 130 मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ द चर्च, कलीसिया के रूपक विवरण। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं और सीखते हैं, हमें तेरा राह में चला, हमें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे वचनों के द्वारा बहुत आय से आशीष दे, और मेरे संग हो पिता तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे और उससे चला कि मैं तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारे श्रोताओं, आज का संवाद का शीर्षक है कलीसिया के रूपक विवरण। हम इन दिनों कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं, कलीसिया जिसे यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं, और कलीसिया वह जरिया है जिसे यीशु ने इस जगत पर दिया है जिससे लोगों का उद्धार हो पाए। नए नियम की कलीसिया का रूपक वर्णन कलीसिया के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। हम इनके स्वरूप को देखेंगे। इनके हम सात रूपक विवरण आज देखेंगे। पहला रूपक है कलीसिया एक देह के रूप में। देह का रूपक कलीसिया की एकता और प्रत्येक सदस्य के संपूर्ण के साथ कार्यात्मक संबंध पर जोर देता है। क्रूस सभी विश्वासियों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाती है। इफिसियों 2:16 पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने एक देह कलीसिया होने के लिए बपतिस्मा लिया है। 1 कुरिन्थियों 12:13 एक देह के रूप में कलीसिया मसीह की देह से कम नहीं है। इफिसियों 1:23 यह वह चीज है जिसके द्वारा वह अपनी पूर्णता प्रदान करता है। विश्वासी उसकी देह के अंग हैं। इफिसियों 5:30 फलस्वरूप वह हर सच्चे विश्वासी को अपनी शक्ति और अनुग्रह के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन देता है। मसीह देह का सिर कुलुसियों 1:18 कलीसिया का सिर है। इफिसियों 5:23 अपने प्रेम में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के देह के प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक आध्यात्मिक उपहार दिया है जो उस सदस्य को एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाता है। जिस तरह प्रत्येक अंग जो करता है वह मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह कलीसिया के विशेष कार्य का सफल समापन सदस्यों को दिए गए प्रत्येक आध्यात्मिक उपहार के कामकाज पर निर्भर करता है। दिल के बिना देह का कुछ अच्छा नहीं है, या आंखों या एक पैर के बिना यह कितना सक्षम होगा। यदि इसके सदस्य अपने उपहारों को रोक लेते हैं तो कलीसिया मर जाएगी या अंधी या कम से कम अपंग हो जाएगी। हालांकि ये विशेष परमेश्वर द्वारा सौंपे गए उपहार अपने आप में एक अंत नहीं है, यह दूसरों की भलाई करने के लिए है। दूसरा रूपक है कलीसिया एक मंदिर के रूप में। कलीसिया परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:9-16, इफिसियों 2:20। यह मंदिर कोई मृत संरचना नहीं है, यह गतिशील विकास को प्रदर्शित करता है। जैसा कि मसीह जीवता पत्थर है, पत्रस ने कहा, इसलिए विश्वासी जीवता पत्थर हैं जो एक आध्यात्मिक घर बनाते हैं। पहला पत्रस 2:4-6। भवन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, नए जीवित पत्थरों को लगातार मंदिर में जोड़ा जाता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, इफिसियों 2:22। पौलुस विश्वासियों से इस मंदिर में सर्वोत्तम निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आग्रह करता है ताकि यह न्याय के दिन अग्नि परीक्षा को सहन कर सके, पहला कुरिन्थियों 3:12-15। मंदिर का रूपक स्थानीय मंडली और संपूर्ण कलीसिया की पवित्रता दोनों पर जोर देता है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, पौलुस ने कहा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, पहला कुरिन्थियों 3:17। अविश्वासियों के साथ घनिष्ठ संबंध उसके पवित्र चरित्र के विपरीत है, पौलुस ने कहा, और इसे बचा जाना चाहिए। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, दूसरा कुरिन्थियों 6:14-16। उसकी सलाह व्यापार और विवाह संबंधों दोनों से संबंधित है। कलीसिया को बहुत सम्मान देना चाहिए क्योंकि यह वह चीज है जिसका परमेश्वर अपना सर्वोच्च सम्मान देता है। तीसरा रूपक है कलीसिया एक दुल्हन के रूप में। कलीसिया को दुल्हन के रूप में और प्रभु को दूल्हे के रूप में दर्शाया गया है। प्रभु सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, होसे 2:19। फिर से वह आश्वासन देता है, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यिर्मयाह 3:14। पौलुस उसी कल्पना का उपयोग करता है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं, दूसरा कुरिन्थियों 11:2। अपनी कलीसिया के लिए मसीह का प्रेम इतना गहरा और स्थायी है कि उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया, इफिसियों 5:25। उसने वह बलिदान किया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, इफिसियों 5:26। परमेश्वर के वचन के सत्य के पवित्रीकरण प्रभाव यूहन्ना 17:17 और शुद्धिकरण जो बपतिस्मा प्रदान करता है के द्वारा मसीह कलीसिया के सदस्यों को शुद्ध कर सकता है, उनके गंदे वस्त्रों को हटा सकता है और उन्हें अपनी सिद्ध धार्मिकता के वस्त्र पहना सकता है। इस प्रकार वह कलीसिया को अपनी दुल्हन बनने के लिए तैयार कर सकता है, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, इफिसियों 5:27। कलीसिया की पूर्ण महिमा और वैभव तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कि मसीह वापस नहीं आ जाता। चौथा रूपक हम देखेंगे वह है कलीसिया ऊपर के यरूशलेम के रूप में। पवित्र शास्त्र यरूशलेम को सियोन नगर कहता है, वहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है, भजन संहिता 9:11। सियोन से ही उधार आता है, भजन संहिता 14:7-53:6। वह नगर सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। भजन संहिता 48:2। नया नियम कलीसिया को ऊपर के यरूशलेम के रूप में देखता है, जो संसारिक यरूशलेम का आत्मिक प्रतिरूप है। गलातियों 4:26। इस यरूशलेम के नागरिकों की नागरिकता स्वर्ग की है। फिलिपियों 3:20। वे प्रतिज्ञा की संतान हैं, जो आत्मा के अनुसार जन्म लेते हैं, उस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं जिसके द्वारा मसीह ने उन्हें स्वतंत्र किया है। गलातियों 4:28-29 और 5:1। इस शहर के नागरिक अब व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के प्रयास के बंधन में नहीं है। गलातियों 4:22-26, 31 और 5:4। आत्मा के कारण वे विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। वे महसूस करते हैं कि मसीह यीशु में यह प्रेम के द्वारा प्रभाव करने वाला विश्वास है जो उन्हें नागरिकता देता है। गलातियों 5:5-6। जो लोग इस महिमामय समूह का हिस्सा हैं, वे सियोन पर्वत पर और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम में स्वर्गदूतों की एक असंख्य मंडली में और पहिलौठों की सभा और कलीसिया में जो स्वर्ग में लिखे हुए हैं आए हैं। इब्रानियों 12:22-23। पांचवा रूपक है कलीसिया एक परिवार के रूप में। स्वर्ग और पृथ्वी की कलीसिया को एक परिवार माना जाता है। इफिसियों 3:15। इस परिवार से लोग कैसे जुड़ते हैं इसका वर्णन करने के लिए दो रूपकों का उपयोग किया जाता है। गोद लेना रोमियों 8:14-16, इफिसियों 1:4-6 और नया जन्म यूहन्ना 3:8। मसीह में विश्वास द्वारा जिन्होंने अभी अभी बपतिस्मा लिया है, वे अब दास नहीं हैं, परंतु स्वर्गीय पिता की संतान हैं। गलातियों 3:26-4:7 तक। जो नई वाचा के आधार पर जीते हैं, अब वे परमेश्वर के घराने इफिसियों 2:19, विश्वास के घराने गलातियों 6:10 के हैं। उसके परिवार के सदस्य परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करते हैं। गलातियों 4:6 और एक दूसरे से भाई और बहन के रूप में संबंध रखते हैं। याकूब 2:15 और 1 कुरिन्थियों 8:11 तथा रोमियों 16:1। क्योंकि वह बहुतों को कलीसिया के परिवार में लाया, पौलुस स्वयं को एक आत्मिक पिता के रूप में देखता है। यीशु मसीह में उसने कहा, सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, 1 कुरिन्थियों 4:15। वह उन लोगों को जिन्हें वह लाया था मेरे प्रिय बालकों के रूप में संदर्भित करता है, 1 कुरिन्थियों 4:14। इसका हम तुलना कर सकते हैं इफिसियों 5:1 से। परिवार के रूप में कलीसिया की एक विशेष विशेषता संगति है। मसीह संगति ग्रीक में कोइनोनिया कहते हैं, केवल समाजीकरण नहीं है बल्कि सुसमाचार में संगति है। फिलिपियों 1:5। इसमें परमेश्वर पिता, उसके पुत्र और पवित्र आत्मा, 1 यूहन्ना 1:3, 1 कुरिन्थियों 1:9 और 2 कुरिन्थियों 13:14 के साथ साथ विश्वासियों के साथ सच्ची संगति शामिल है, 1 यूहन्ना 1:3-7। सदस्य तब किसी को भी जो परिवार का हिस्सा बन जाता है संगति का दाहिना हाथ देते हैं, गलातियों 2:9। परिवार का रूपक एक देखभाल करने वाले कलीसिया को प्रकट करता है, जहां लोगों को प्रेम किया जाता है, सम्मान किया जाता है और हर किसी को व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां लोग स्वीकार करते हैं कि उन्हें एक दूसरों की जरूरत है, जहां प्रतिभा का विकास होता है, जहां लोग तरक्की करते हैं, जहां सबकी पूर्ति होती है। इसका तात्पर्य उत्तरदायित्व, आध्यात्मिक माता पिता के लिए सम्मान, आध्यात्मिक भाई और बहनों के लिए निगरानी भी है। और अंत में इसका मतलब है कि प्रत्येक सदस्य के पास एक दूसरे सदस्य के प्रति एक ऐसा प्रेम होगा जो एक गहरी वफादारी जन्म देता है और सशक्त और मजबूत होता है। एक कलीसिया परिवार में सदस्यता एक दूसरे का आनंद लेने और समर्थन करने के लिए उन व्यक्तियों को सक्षम बनाती है जो स्वभाव और मनोवृत्ति में बहुत भिन्न होते हैं। कलीसिया परिवार के सदस्य अपने व्यक्तित्व को खोए बिना एकता में रहना सीखते हैं। छठा रूपक है कलीसिया सत्य का खंभा और न्यू के रूप में। जीवित परमेश्वर की कलीसिया सत्य का खंभा और न्यू है। पहला तिमोथियुस 3:15। यह सत्य का भंडार और गढ़ है जो सत्य को उसके शत्रुओं के हमलों से बचाता है। सत्य हालांकि गतिशील है, स्थिर नहीं है। यदि सदस्य नया प्रकाश होने का दावा करते हैं, एक नया सिद्धांत या पवित्र शास्त्र की एक नई व्याख्या, अनुभव के लोगों को पवित्र शास्त्र के मानक द्वारा नई शिक्षा का परीक्षण करना चाहिए। हम देख सकते हैं बाइबल से इसके लिए यशाया 8:20 में, यदि नया प्रकाश इस मानक को पूरा करता है तो कलीसिया को इसे स्वीकार करना चाहिए, यदि नहीं तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। सभी सदस्यों को इस बाइबल आधारित निर्णय के आगे झुकना चाहिए, क्योंकि सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। यह नीति वचन 11:14 कहती है। सत्य के प्रसार के माध्यम से अर्थात इसकी गवाही के माध्यम से कलीसिया जगत की ज्योति, एक नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है बन जाता है जो छिप नहीं सकता और पृथ्वी का नमक है, मत्ती 5:13-15 में। और हम सातवां रूपक अभी देखेंगे, वह है कलीसिया एक युद्धकारी और विजयी सेना के रूप में। तो आइए हम सातवां रूपक के विषय में चर्चा करें। यहाँ पृथ्वी पर कलीसिया युद्ध में लगी सेना के समान है। इसे आध्यात्मिक अंधकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कहा जाता है। हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह हम पढ़ते हैं इफिसियों 6:12 में। मसीह परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इफिसियों 6:13। सदियों से कलीसिया को शत्रु के विरुद्ध भीतर और बाहर दोनों से लड़ना पड़ा है। प्रेरितों के काम 20:29-30, पहला तिमोथियुस 4:1, इसने उल्लेख्य प्रगति की है और जीत हासिल की है, लेकिन यह अभी तक विजयी कलीसिया नहीं है। दुर्भाग्य से कलीसिया में अभी भी बड़ी त्रुटियां हैं। एक अन्य रूपक के माध्यम से यीशु ने कलीसिया के भीतर की त्रुटियों की व्याख्या की। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया, मत्ती 13:24-25 में हम पाते हैं। जब नौकरों ने जंगली दाने के पौधों को खींचना चाहा तो किसान ने कहा, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, मती 13:29-30। खेत में जंगली दाने के पौधे और गेहूं दोनों पनप गए हैं, जबकि परमेश्वर परिवर्तित लोगों को कलीसिया में लाता है, शैतान अपरिवर्तित को लाता है। ये दोनों समूह पूरी देह को प्रभावित करते हैं, एक शुद्धिकरण के लिए काम करता है, दूसरा भ्रष्टाचार के लिए। बीच संघर्ष कलीसिया के भीतर कटनी दूसरे आगमन तक जारी रहेगा। कलीसिया का बाहरी युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। क्लेश और संघर्ष आगे हैं, यह जानते हुए कि उसके पास थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान परमेश्वर की कलीसिया से क्रोधित है, जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 का 12 और 17 में। और इसके विरोध एक ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी भी ना हुआ होगा। लेकिन मसीह अपने वफादार लोगों की ओर से हस्तक्षेप करेगा और लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। दानियल 12 का 1, यीशु ने हमें आश्वासन दिया है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24 का 13, मसीह की वापसी पर विजयी कलीसिया उभरेगी। उस समय वह अपने आप को एक तेजस्वी कलीसिया सभी लोगों के सभी युगों के विश्वासियों को जो उसके लहू द्वारा खरीदे गए हैं देने में सक्षम होगा, जिसमें ना कलंक ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इफिसियों 5 का 27। तो आइए हम उस पवित्र कलीसिया के स्थिति में होने की प्रयास करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें बुलाया है और प्रभु यीशु मसीह से हमें पवित्र करना चाहता है, जो निष्कलंक और बिना झुर्री का हो, जो तेरे राज में हो सके। पिता हमें उसके उस स्थिति तक पहुँचा। हम सबों को तेरे पवित्र आत्मा से लेन दे पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।